آج کا پہلا کلاس ہے. چار جنوری 1966 منگلوار. ریکارڈ چلا ہے تمہیں پا کے ہم نے جہاں پا لیا ہے. اوم شانتی. شیو بابا بیٹھ کر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں. نراکار شیو بابا بیٹھ کر کے نراکاری بچوں کو سمجھاتے ہیں. پہلے پہلے یہ کہتے ہیں کہ بچوں دیہی ابھیمانی بھو, اپن کو آتما سمجھو اور باپ کو یاد کرو. بابا اس سمے بچوں کو بتاتے ہیں کہ ابھی تم دیہی ابھیمانی بنو کہ ہم آتما ہیں, اور باپ ہم کو پڑھاتے ہیں. بابا نے بچوں کو سمجھایا ہے کہ سب کچھ سنسکار پڑھائی کا بھی آتما میں رہتا ہے, اس لیے باپ آ کر بار بار سمجھاتے ہیں. کیونکہ اس سمے میں جب مایا کا راجیہ ہوتا ہے, راون کا راجیہ ہوتا ہے, ارتھات بھکتی مارگ شروع ہوتا ہے, تو منشیہ دیہ ابھیمانی بن جاتے ہیں. پھر جب بھکتی مارگ پورا ہو جاتا ہے تو باپ آتے ہیں اور آ کر کے بچوں کو کہتے ہیں کہ ابھی دیہی ابھیمانی بھو, یہ جو بھی تم نے جنم جنمانتر جپ تپ دان پنیہ وغیرہ کیے, یہ جو پانچ وکار بھی تمہارے میں پرویش کیے, تو تم دیہ ابھیمانی بن پڑے. گویا یہ پانچ وکار روپی راون آ کر کے تم بچوں کو دیہ ابھیمانی بناتے ہیں. واستو میں تم دیہی ابھیمانی تھے, کیونکہ یہ پریکٹس تم کو یہاں کرائی جا رہی ہے کہ بچے ابھی اپن کو آتما سمجھو, اور یہ سمجھو کہ برابر یہ شریر چھوڑ کر کے پھر ہم کو نیا شریر لینا پڑے گا. ستیہ تریتا میں پانچ وکار روپی مایا نہیں ہے. تبھی دیوی دیوتا ہیں جن کو شیشٹاچاری پاون کہا جاتا ہے, وہ سدیو آتما ابھیمانی بنتے ہیں. کیونکہ اس سمے میں باپ آ کر کے تم کو آتما ابھیمانی بناتے ہیں. پھر یہ اکیس جنم کے لیے اویناشی ہو جاتا ہے. کس سمے آ کر کے باپ آتما ابھیمانی بناتے ہیں؟ سنگم پر. ایکوریٹ سنگم کب کہیں؟ کب ہوتا ہے؟ ایکوریٹ پرتیکشتا سن 36 میں ہوتی ہے, 47 میں ہوتی ہے, 76 میں ہوتی ہے, یا اور کبھی بعد میں 36 میں ہوتی ہے. باپ سپریم ٹیچر بن کر کے جب سے آتے ہیں تب سے لے کر 40 ورش میں تمہاری پڑھائی پوری ہوتی ہے, اور 40 ورش پڑھائی پوری ہونے کے بعد جو سیکنڈ جو کھن آتا ہے, کیونکہ بولا ہے پرشوتم بننے کی پرشوتم گھڑی بھی اس سنگم یوگ میں ہے, پرشوتم دن بھی اس سنگم پر ہے, پرشوتم ماس بھی اصلی سنگم پر ہے, और पुरुषोत्तम वर्ष भी इसी संगम पर है। तो जब बाप आते हैं, आत्माभिमानी बनाते हैं, तो 21 जन्म के लिए अविनाशी हो जाता है। तो कब से शुरू करें 21 जन्म? संगम में भी कब से? बोला, क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ एक तो माया नहीं है, फिर ये पांच विकार भी नहीं है, और देही अभिमानी भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम आत्मा हैं। ये शरीर छोटा लिया है, बड़ा होगा, छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे। तो ये आत्मा अभिमानी हुए ना? तो देखो, आत्मा अभिमानी बनने से ही तुम बच्चे 21 जन्म सुखी होते हो। कब से होते हो आत्मा अभिमानी? पढ़ाई पूरी होती है नंबर वार, और आत्माभिमानी बन जाती है, माना 21वां जन्म शुरू हो जाता है। तो जब रावण राज्य आता है तो तुम बदल करके देह अभिमानी बन जाते हो। उसको कहा जाता है सोल कॉन्शियस, और इसको कहा जाता है बॉडी कॉन्शियस। उसको कहा जाता है बॉडी कॉन्शियस जब विकारी बन जाते हो, जब निराकारी दुनिया में हो, फिर ये सवाल नहीं उठता है क्या कि बॉडी कॉन्शियस हो या सोल कॉन्शियस हो। बॉडी कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस का सवाल वहां उठता ही नहीं है। कहां है? परमधाम में, क्योंकि वहां तो है ही सोल, साइलेंस वर्ल्ड। ये समय वाले संस्कार कोई वहां नहीं रहते हैं। किस समय वाले संस्कार? रावण राज्य वाले संस्कार वहां, मैंने कहा परमधाम में नहीं रहे। इस समय में संगम युग पर तुम बच्चों को पलटाया जाता है। देह अभिमानी से देह अभिमानी बनाते हैं, तो फिर सतयुग में तुम देह अभिमानी होने के कारण कोई भी दुख नहीं उठाते। एक तो माया भी नहीं है, दूसरा उनको ये नॉलेज है कि हम आत्मा हैं, और यहाँ हम देह हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि अभी देह अभिमान छोड़ो। कौन सा बाप समझाते हैं? हैं? आत्माओं का बाप समझाते हैं कि देह अभिमान छोड़ो। मनुष्यों का बाप नहीं समझाते हैं, वो तो खुद ही देह ही है, देह अभिमानी है। देह ही अभिमानी बनो तो मेरी याद से तुम्हारा विकर्म विनाश होगा। ऐसे क्यों कहते कि मेरी याद से ही तुम्हारा विकर्म विनाश होगा? क्योंकि जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। मैं तो निष्पाप हूँ, पाप से भी परे और पुण्य से भी परे। तो मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारा जो विकर्म है, पाप कर्म है 63 जन्मों का, वो खत्म हो जाएगा। फिर देखो वहां तुम विकर्माजीत बन जाते हो। कहां? सत्युरुज विकर्मों पर जीत पा लेते हो, वहां राज्य भी करते हो और वहां शरीर भी है, तो भी तुम आत्माभिमानी होने के कारण ये जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा भूल जाते हो। ये जो कहते हैं आत्माभिमानी बाबा, और फिर जो ये शिक्षा मिलती है, जिस शिक्षा से तुम वहां आत्माभिमानी बन जाते हो तो फिर सदैव सुखी भी रहते हो। तो देखो, देह अभिमान कहा ही जाता है बॉडी कॉन्शियस को। वहां ये प्रश्न सवाल ही नहीं उठता है, सोल कॉन्शियस से ही तो तुम्हारा विकर्म विनाश होने का है। इसलिए बाप बार बार समझाते हैं कि मुझे याद करते रहो, क्योंकि ये जो अभी स्नान के लिए भी समझाया जाता है कि भाई पतित पावन एक परम पिता परमात्मा है, यही आकर के कहते हैं कि आत्माभिमानी बन और मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये अभिमानी तुम बन जाते हो पानी में स्नान करने से, तो वो कोई योगाग्नि तो हो ही नहीं है। कहां पानी और कहां अग्नि, ये पतित पावन तो है ही नहीं। ये जो तुम स्नान करते हो अभी, कुंभ का मेला, फलाना मेला, क्योंकि ऐसे ऐसे समय जब आता है तुम बच्चों को उनको समझाने की सर्विस करने का चांस मिलता है। जैसा जैसा समय है ऐसे ऐसे उनको सर्विस मिले तो वो समझे। अभी तुम समझते हो कि कितने स्नान करते होंगे, सभी जो भी भाषाएं हैं, मद्रास की तरफ जाओ, फलाने की तरफ जाओ, कहां भी जाओ, गुजराती हो, फलाने हो, तो अभी उनको हम कैसे समझावें? एक एक को तो नहीं समझा सकते हैं ना। इसलिए बाबा बच्चों को कहते रहते हैं, ये जो कुंभ का मेला है खास, उसमें जरूर स्नान करते हैं और सभी जगह में करते हैं। ऐसे नहीं है कि भारत के 40 करोड़ आदमी कोई एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। मनाते हैं जरूर, कोई सागर पर जाते हैं, कोई नदियों पर जाते हैं। तो देखो कितने कागज पत्रे छपाने हैं, चार एक 1966 की वाणी का दूसरा पेज। बुद्धि कितनी काम करनी चाहिए, सब इसकी बुद्धि काम करनी चाहिए कि इनको हम समझावे, भले छोटा पर्चा ही हो। चलो त्रिमूर्ति न भी डाले। अच्छा छोटा ही पर्चा सही, उनमें सिर्फ समझाना है कि बहनों भाइयों थोड़ा विचार तो करो कि पति तो पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं द्वारा पावन बन सकते हो या पानी के सागर से निकली हुई पानी की नदियों से पावन बन सकते हो। पानी की नदियों में सदैव स्नान करते आए हो, उनसे कोई पति तो पावन हो सकता है क्या? अगर इस पहेली को हल किया कि पतित पावन को कहते हैं, तो एक सेकंड में तुम 21 जन्म जीवन मुक्ति पा सकते हो, राजभाग पा सकते हो, वर्षा पा सकते हो। अभी अक्षर तो थोड़े हैं ना, तो देखो बाबा सबको समझाते रहते हैं कि जास्ती नहीं हो तो हरेक अपने अपने सेंटर पर बहुत छपावे, क्योंकि नदियां जहां हो वहां ही तो है ना, कोई जगह में नदियां न भी होंगी कहां तो कहां न कहां जाते होंगे, थोड़ा दूर भी जाते होंगे। देखो स्नान करने कहां से कहां चले जाते हैं, अभी नदियां निकलती तो बहुत दूर से है। ये क्यों रखा है कि बस इन्हीं नदियों में स्नान करने से त्रिवेणी पर या इलाहाबाद पर वहीं पतित पावन होंगे? नदियां तो वहीं हैं जो पहाड़ों से निकली है निकलती है, नदी माना नदी, स्नान माना स्नान। तो एक जगह में खास जाकर के स्नान करना, इतना खर्चा करके ट्रेन की इतनी तकलीफ लेकर के, अच्छा स्नान भी तो उनमें जाकर के जरूर करते हैं, ऐसे तो कोई नहीं है कि खास एक दिन है जिसमें सब आदमी स्नान करके पावन हो जाएंगे, ऐसे भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यही नदियां हैं जिनमें जन्म जन्मांतर स्नान करते आते हैं। अरे सतयुग में देवताएं भी स्नान करते थे, कहां सतयुग में देवताएं स्नान करते थे कि नहीं है, कि बिना स्नान किए रहते थे? सतयुग त्रेता में भी नदियां होती है या नहीं? होती तो है। तो देखो जमुना नदी में ये कृष्ण की भी लीला होती थी, दिखाते हैं बरोबर, ये पानी कोई पतित पावन है? अरे सवाल ही नहीं उठता है। तो देखो ये भक्ति मार्ग की दुर्गति मार्ग की सब बातें हैं। अच्छा यहाँ नदियों पर क्यों आती हैं? नदी में तो कहाँ भी स्नान करें, कोई खास स्थान पर क्यों आते हैं? तो देखो सभी तो नहीं आएंगे ना, सभी कोई तो गंगा में, कोई कहाँ कोई कहाँ, जो भी नदियां हैं वहां स्नान करेंगे, बहुत नदियां अथाह नदियां हैं उनमें जाकर के स्नान करेंगे। अरे भला नदी माना नदी, पानी माने पानी, निकलता है सागर से और पहाड़ों से, फिर कहां भी स्नान करो, स्नान करना है ना, नाम ही रहता है स्नान करने से। अब स्नान तो मनुष्य सदैव करते हैं, देवता स्नान नहीं करते होंगे, वो भी नदियों में स्नान करते होंगे, पानी में स्नान करते होंगे। पानी से कोई पतित बने ये सवाल ही नहीं उठता है, न मनुष्य कोई पानी में जाकर के स्नान करने से पावन हो सकते हैं, क्योंकि सत्युग में तो पावन ही है, वहां तो ये सवाल ही नहीं उठता है। ये सवाल होता है भक्ति मार्ग में, दुर्गति मार्ग में, जबकि मनुष्य की तमोपदान बुद्धि हो जाती है। बाप बैठ करके समझाते हैं, ऐसी तमोपदान बुद्धि हो जाती है कि ये भी समझ में नहीं आता है। देखो बड़े बड़े विद्वान आचार्य ये जो है, इनको भी बुद्धि में नहीं बैठता है कि पानी में स्नान करने से पावन दुनिया कैसे बन सकती है, ये तो हो ही नहीं सकता है। दुनिया तो पावन ही थी और वो ही नदियां हैं जो पावन दुनिया में थी, कोई दूसरी चीज तो नहीं है। इसे सिद्ध होता है अभी बुद्धि मिल गई, आगे तो बुद्धि नहीं थी, अभी तो बाप ने बुद्धि का ताला खोल दिया है। कोई को अच्छी तरह से समझ में आता है, कोई सुना और कुछ नहीं समझते है। जैसे कोई झुंझारी बुद्धि हो जाती है तो समझ में नहीं आता है। नहीं तो ये तो बहुत बड़ी समझ की बात है, ये बेचारे क्या करते हैं। आगे भले हम भी ऐसे ही थे, हम लोगों की भी तो पत्थर बुद्धि थी ना। किसने बोला है? है? ब्रह्मा बाबा ने बोला। अभी बाप बैठ करके बात अभी समझाते हैं, बच्चे इन बिचारों को देखो, ठंडी में जा करके स्नान करते हैं। भला ठंडी में स्नान करने क्यों जाते हैं? हैं? बेहद की क्या बात है इसमें? हैं? हाँ, जब पुरुषार्थ की ठंडी हो जाती है तो गर्मी लाने के लिए चैतन्य नदियों में स्नान करने जाते हैं। अरे भाई ठंडी में स्नान करने क्यों जाते हैं? गर्म में जावे ना, इतनी मेहनत इतनी तकलीफ, वो भी ठंडी के दिनों में। देखो वहां कितनी तकलीफें होती हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो उनको ऐसे समझाना पड़े ना। जिसकी भी ब्लाइंड फेथ है उनको तो रास्ता बताना ही चाहिए ना। ये है अंधों की लाठी बनना। इस समय की ये मनुष्य देखो, अंधे की औलाद अंधे इनको कहा जाता है और इनको समझ कुछ भी नहीं है। तो उनको सुजाग करना चाहिए कि अरे भाई पानी में स्नान करने से और ही दुर्गति होती है, और अगर तुमको पावन बनना है तो ये जो एक ही बार एक ही दफा बाप आकर पावन बनाते हैं। देखो सत्युग में होते ही हैं पावन, कलयुग में है ही पतित। तो कलयुगी इंद में हो जाती है, कलयुगी इंद, इंद है तो पावन बनना पड़े, पतित पावन भी आवे। ये नदियां तो सदैव हैं ही है, अभी क्या हो गया है नदियों को? है सतयुग त्रेता में भी तो नदियां थी, वहां भी तो स्नान करते होंगे, नदियां तो सदैव एक रसी रहती है, एक रस रहती है क्यों? पहले इतना कचरा नहीं पड़ता था और अभी नदियों में कचरा पड़ता है। समय समय की बात है, सतयुग त्रेता में कचरा पड़ता था, क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि उस समय इतनी आबादी नहीं थी। और अभी तो बाकी बाकी की आत्माएं और झुंड के झुंड और जनसंख्या तो बढ़ती ही जाती है। तो ऐसे क्यों कहा कि नदियां तो सदैव एक रस रहती हैं? है ना, पानी का बहाव एक रस रहता है, पहाड़ों से आती है और नीची स्टेज में जाती है। ऐसे नहीं कि कोई नीचे जगह से सागर से निकलती है और पहाड़ पर चढ़ती है। नीचे गिरेंगी या ऊपर उठेंगी? क्यों नीचे गिरती हैं? है, अरे उनकी वृत्ति ही ऐसी है, नदियों को नीचे ही गिरना है, नीचे गिरते गिरते आखिरी सागर में मिल जाते। तो क्या करना चाहिए? देखो ये चिंतन चलता रहता है ना, मनुष्यों की बुद्धि जो चमो प्रधान हो गई है और मुफ्त में बेचारे दुखी होते हैं। तो दुखियों को रास्ता बताना अपना धर्म है। 4:66 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, फिर कोई न कोई अपने धर्म वाले तो कुछ न कुछ समझ जाएंगे। है कौन समझेंगे? जो हमारे कुल के होंगे, हमारे बाप का खून जिनके अंदर है, संकल्पों का बहता होगा, वो समझ जाएंगे। जिनके अंदर हमारे बाप का खून जन्म जन्मांतर का नहीं होगा, वो नहीं समझेंगे। तो सभी भाषाओं में पीछे टुकड़ी ही चाहिए, भले हरेक सेंटर में 25,000-30,000, बड़े सेंटर में 1,00,000-2,00,000-3,00,000, ये चिटकियां छपाने में तो कोई हर्जा नहीं है ना। अच्छा ये कहें कि भला कौन छपावे, फिर प्रश्न उठता है कि कौन छपावे? चलो भाई गवर्नमेंट छपाती है, दिल्ली में छपेंगे, यहां तो नहीं छपेंगे ना, कहां हैं? लाखों करोड़ों की तादाद में पर्चे कहां छपेंगे? यहां तो नहीं छपेंगे, यहां माने माउंट आबू में तो नहीं छपेंगे। क्यों? और दिल्ली में से यहां वहां जाते भी हैं भाई, कुंभ के मेले पर भी डायरेक्शन मिलते हैं जाओ बांटो। तो ये लाखों यानी जिनकी बुद्धि में ज्ञान का वो नशा है, उनको तो नशा चढ़ेगा। देखो दिल्ली वालों को ही डायरेक्शन देते हैं, क्या डायरेक्शन? हो सकता है इलाहाबाद वालों के पास, विचारों के पास इतने पैसे न भी हो खर्चा करने के, तो इतना कहाँ से खर्चा करें? क्यों इलाहाबाद में पैसे क्यों नहीं, दिल्ली वालों के पैसे पहले पैसे ज्यादा क्यों? अरे इलाहाबाद में छोटा सेंटर और दिल्ली में बड़ा सेंटर। तो देखो दिल्ली में छप रहे हैं और बाबा ने लिख दिया है, तुम वहाँ छपा कर वहाँ भेजो। परंतु ये तो बड़े बड़े बैठ करके छपते हैं, बाबा कहते हैं नहीं, छोटे भी छपाओ जो सबको मिले। सिर्फ इसमें यही भले चित्र भी न भी हो, छोटा बाकी क्या छपेगा। मेरे ध्यान में पाई भी मुश्किल समय खाएगा, लाख दो तीन छपाए देना चाहिए और बहुत भाषाओं में, हिंदी में, अंग्रेजी में भी, उर्दू में भी, गुजराती में भी। देखो सबको मिलते तो है ना, है तो सभी ना। देखो बंगलोर वाले हैं, वहाँ की भाषा कन्नड़िया, कहाँ की भाषा कहाँ फलाना, महाराष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा, सब में ये छोटी छोटी पर्चे छपाओ, जहाँ भी छप सके छपाओ। जहाँ जहाँ जो जो किस्म में के बहुत आदमी हैं, वहाँ उस भाषा में छपा कर देना है, क्योंकि वहाँ से भाषण आती है। मराठी में छपा करके कोई दिल्ली में नहीं भेज देने का है, मराठी में छपा करके कोई लखनऊ नहीं भेज देते हैं, क्योंकि वहाँ मराठी बहुत है, कुएं में बहुत है, तो वहाँ उसमें छपा करके थोड़ा ही। जैसे बाप ने समझाया कि भाई जरा विचार तो करो कि पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ये ज्ञान गंगाएं, जिसे एक ही बार पतित से पावन हो पावन दुनिया में जाना है, या वो पानी की नदियां जिसमें सदैव स्नान करते आए, या उसमें कोई पावन हो सकते हैं क्या? बस बात तो थोड़ी है, नीचे अपनी एड्रेस डाल दो, पिछाड़ी में आकर के समझो कि सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है और पिछाड़ी में थोड़ी एड्रेस डाल देना चाहिए, मुख्य मुख्य सेंटर्स की भी एड्रेस हो। जीवन मुक्ति कैसे मिलती है तो पिछाड़ी में थोड़ी एड्रेस डाल देना। बस अगर ये छोटे पत्र भी छपाए करके बांट दे हैं, वो भी अच्छे से, अच्छा पीछे कोई पढ़े न पढ़े, ये तो समझाया गया है। ये सभी जो स्नान करने वाले हैं समझते हैं कि पानी से स्नान होंगे, ये तो सभी बंदर बुद्धि हैं, क्योंकि उनको गाया हुआ है बंदर बुद्धि, क्योंकि जिसमें समझ नहीं है उनको ही बंदर बुद्धि कहा जाता है। तो देखो तो उनको समझा रहे हो, अरे भाई ये कहाँ तक तकलीफ करते रहेंगे पानी की नदियों में स्नान करने की। तो बेचारा आकर के समझे कि कैसे, और उनको समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा में स्नान करने से एक सेकंड में जीवन मुक्ति, पावन बन सकते हो 21 जन्म के लिए। वो भी लिख सकते हैं कि 21 जन्म के लिए पावन बन सकते हैं। तो ये बना करके यही बनाओ। अभी ये बनाने में कोई सहज है, ऐसे नहीं है कि सभी ब्रह्मा कुमारियां कोई बुद्धू हैं। बॉम्बे में भी अच्छे अच्छे महारथी हैं। ये तो आप ही समझ करके, आपस में मिल करके, विचार सागर मंथन करके, बना करके और खूब बांटना चाहिए। बोले क्या होगा, 2-3 हजार का सभी के हिसाब में आएगा तो कागज का खर्चा होगा, छपाई का खर्चा होगा। अभी इसमें और कोई जास्ती खर्चा तो है ही नहीं, क्योंकि पर्चे तो छोटे छोटे हैं ना। बड़े बड़े पर्चे छपावेंगे तो ज्यादा खर्चा आएगा, और बहुतों को बांट भी नहीं सकेंगे। तो इतला कर देवे पीछे, जब भी भले ढेर के ढेर छपे रखे हुए भी हो, कोई हर्जा नहीं है। स्नान तो करते ही जाते हैं। एकादशी हुई, स्नान किया, सूर्यग्रहण हुआ, स्नान किया, चंद्रग्रहण किया, स्नान किया, फलाना स्नान, फलाना स्नान। स्नान तो इनका चला ही आता है। को तो देखो मेले लगे ही पड़े हैं। जहां जहां गंगाओं में जाओ वो पंडे लोग बैठे ही रहते हैं। अभी उन पंडियों की भी तो दरकार नहीं है ना, वो क्यों बैठते हैं? स्नान करता है, करना है तो जाकर के स्नान करके फिर चले जाओ, फिर वो पंडा तिलक देंगे, क्या करेंगे, वो पंडा तिलक देंगे। है कौन सी तिलक की बात, आत्मिक स्थिति का तिलक की बात है और
विजय का तिलक
है। विजय का तिलक भी है, परंतु वो तो पैसा देंगे तो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। पानी के ऊपर वो एक धंधा निकाल करके बैठे हुए हैं। देखो पानी के ऊपर स्नान करने के लिए भी धंधे चल पड़े भाई। स्नान करेगा कुछ पैसा मिलेगा, ऐसे बहुत हजारों लाखों की तादाद में आजीविका होती रहती है। सिर्फ नदी पर जाकर के स्नान करने से वो उनको तिलक लगाएंगे, चंदन लगाएंगे। कौन सा चंदन है, वेद में कौन सा चंदन है, देवी गुणों का चंदन। कोई ने कोई पत्थर ठिक्कर की मूर्ति बना कर रखी होगी, उनको हाथ जोड़ेंगे, वहां भी कुछ न कुछ रखेंगे। देखो भक्ति मार्ग का कितना धंधा है, नहीं तो वास्तव में है तो एक सेकंड की बात। तो तुम लिखते हो भाई एक सेकंड में 21 जन्म की जीवन मुक्ति पा सकते हो, और नीचे लिखा हो लिखने वालों का नाम ब्रह्मा कुमारियां 4166 चौथा पेज। अच्छा कोई सिर्फ चिटकियां ही निकाले, कोई त्रिमूर्ति का चित्र भी लगा देवे, क्योंकि सभी सेंटर्स में त्रिमूर्ति के चित्र का ब्लॉक तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि जबकि त्रिमूर्ति से ही भारत स्वर्ग बन रहा है, बन रहा है ना, शिव द्वारा, शिव से ब्रह्मा द्वारा जीवन मुक्ति। देखो अक्षर कितना अक्षर है, फिर भी ये तो समझना चाहिए कि ब्रह्मा सो भी तो यही है। ब्रह्मा द्वारा मुक्ति हो करके ब्रह्मा भी तो विनाश हो जाएगा है? ब्रह्मा बचेगा या खलास हो जाएगा है? तो जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है ये भी बुद्धि चलती है ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो, ब्रह्मा भी विनाश पा जाएगा, कोई बैठा तो नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ प्रजापति है ना, कहाँ है, मनुष्य है ना, वो भी तो दिखलाते हैं कि बुड्ढा है। कौन प्रजापति है? तो समझाना चाहिए कि इन द्वारा स्थापना हो और फिर ये भी विनाश हो जाएंगे। तो विचार करना चाहिए कितना समय में जीता रहेगा। इस बात पर विचार करना चाहिए ये प्रजापिता कब तक जीता रहेगा। चित्र तो देखो बुड्ढे का लगा हुआ है ना, कोई जवान का तो नहीं लगा हुआ है। तो ये बुद्धि से समझाना चाहिए ना, क्या है? जैसे ब्रह्मा का बूढ़े का चित्र लगा हुआ है तो बूढ़ा ब्रह्मा खलास हो गया कि रह गया? तो ये बुद्धि से समझाना चाहिए ना, जो कुछ न कुछ सेंसिबल होगा समझेगा कि इन द्वारा किन की स्थापना होती है। बताओ सबूरे ब्रह्मा के द्वारा किसकी स्थापना होती है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती है। तो स्थापना हो जाएगी फिर ये भी तो खत्म होगा है? दादा लेखराज ब्रह्मा का जीवन का लक्ष्य क्या हुआ? ब्राह्मण धर्म की स्थापना करना, न कि देवता धर्म की स्थापना करना। क्यों देवता धर्म की स्थापना करना क्यों नहीं? क्योंकि ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला दिखाया ना, जो दाढ़ी मूछ वाले होते हैं वो विकारी मनुष्य होते हैं कि देवता होते हैं? और देवता धर्म की स्थापना किसके द्वारा होगी है? देवता द्वारा ही होगी। तो खत्म हो जाएगा, उनके पहले स्थापना जरूर होनी चाहिए। जो फिर शंकर से विनाश भी हो जावे, क्या पहले शंकर प्रत्यक्ष होता है कि पहले ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है? ब्रह्मा प्रत्यक्ष होता है, उसका विनाश हो, विनाश भी किसके द्वारा, किसका विनाश है? ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई है, जिसमें मिक्स ब्राह्मण भरे पड़े हैं, सभी कुरियों के हैं या श्रेष्ठ ब्राह्मण ही हैं? सभी कुरियों के, तो उनका विनाश लिखा तो हुआ है ना। और दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने ही खड़ा है, है? दिन प्रतिदिन क्या समझते जाएंगे, किसका विनाश है? जो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन हुई, उसकी विनाश, उसका विनाश तो सामने ही खड़ा है। ये बात दिन प्रतिदिन लोग बाहर की दुनिया के भी समझते जावेंगे। ये झंझट झगड़ा की तो वृद्धि होती ही रहेगी। क्या झंझट, क्या झगड़ा है? अरे ब्रह्मा द्वारा जो स्थापना हुई है ब्राह्मणों की, अनेक पुरियों वाले ब्राह्मणों की, नंबरवार ब्राह्मणों की, ब्रह्मा के विनाश के बाद क्या होगा? उनका भी विनाश होता रहेगा। और ये झगड़ा तो बढ़ता ही रहेगा। देखो ये झगड़ा वृद्धि को पाता जाता है ना। किसका किसका झगड़ा? जो मिक्स ब्राह्मण है उनमें जो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ सूर्यवंशी ब्राह्मण है उनका, और जो नंबरवार घटती कला के ब्राह्मण है उनका झगड़ा तो बढ़ता ही जाता है। जब कोई भी जगह में झंझट होती है, मिल्कियत के ऊपर भी, तो चलते चलते झंझट सहन नहीं होती है, है? किसको सहन नहीं होती है, है? अरे कौन सी मिल्कियत की यहाँ बात है? अरे यहाँ तो ज्ञान रत्नों की मिल्कियत है ना, तो किसको सहन नहीं होती है? इनके पास इतनी मिल्कियत क्यों आ गई, हमारे पास इतनी मिल्कियत क्यों नहीं आई? तो सहन होगी? नहीं होती है। झंझट सहन नहीं होती है मिल्कियत की, बढ़त की, तो एक दो में मारा मारी कर देते हैं। ये होता है, बहुत झगड़े होते हैं। फिर एक दो को समझाए समझाए चलते चलते आखरीन में एक दो में लड़ मरते हैं। अभी क्या काम चल रहा है? अभी आखरीन चल रहा है कि अभी समझाने का काम चल रहा है? समझाए समझाए कोशिश करते हैं कि समझ जाए। विनाश कर देते हैं। ये भी ऐसे ही तो है ना। क्या ये भी माने क्या? ब्रह्मा द्वारा जात जाति के ब्राह्मणों की स्थापना, फिर शंकर द्वारा उन जात जाति के ब्राह्मणों का विनाश, ये भी तो ऐसे ही है ना कि विनाश तो सामने ही खड़ा है, जो अच्छी तरह से भागवत या गीता वगैरह पढ़ने वाले होंगे वो तो इन बातों को समझेंगे ना। ये विनाश तो कलप पहले हुआ भी है, कलप पहले भी हुआ था। क्या विनाश? कौरव पांडवों का जो विनाश हुआ 5000 साल पहले भी हुआ था। जो पंडा के बच्चे थे वो विजयी हुए पांडव, और जो हम करेंगे ऐसे कुरु के बच्चे थे वो सब उन कौरवों का विनाश हो गया। अरे स्वर्ग की स्थापना भगवान करेगा, भगवान की सहायता से भगवान के बच्चे करेंगे या ये कौरव करेंगे? यानी कुछ समय आगे ये विनाश हुआ था, ये लड़ाई कोई जास्ती नहीं है, ये महावारी लड़ाई तो बिल्कुल ही नजदीक में है, कोई लाखों वर्ष नहीं हुए हैं। तो बच्चों को चाहिए सर्विस है। कौन से बच्चों को? जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनको क्या चाहिए? सर्विस चाहिए। अभी ये जो पत्रे जो एग्जीबिशन होता है उनमें भी छपाएंगे। क्या कहा? कौन से सन की वाणी है? हैं? छाछठ की वाणी है, और बाबा ने पहले ही बता दिया भांति भांति के ब्राह्मणों की जो एग्जीबिशन होती है उन एग्जीबिशन में भी हैं बांटने के लिए ये छोटी छोटी चिटकियां पर्चे छपाएंगे, क्योंकि ये कुंभ के नजदीक में ही आने वाले हैं, पत्रे छपे हुए हैं। अभी छपत तो है, उनमें ये पहेलियां डालनी है। उन समझू को भी अच्छी तरह से समझाना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ूं। देखो ये ठीक है ना, स्नान करने से कोई पतित पावन बनेगा या योग से पतित पावन बनेगा? भगवान वाच है, मेरे को याद करने से तुम्हारे सब विनाश हो जाएंगे विकर्म, और तुम पावन हो जाएंगे। या गंगा जमुना में स्नान करने से पावन बनेंगे? गंगा स्नान तो करते ही आए हैं जन्म जन्मांतर। जहाँ भी दुकानें हैं, तुम बच्चों को एग्जीबिशन है, कहीं भी तो मौका पर जाकर के भाषण कर सकते हो। क्या कहा? जहाँ मौका निकले वहाँ तुम भाषण, या बेमौके नहीं तो पिटाई उटाई हो जाए। अभी जैसे इन्होंने वहाँ मौके पर निकाले हैं, बहुत भीड़ है, परंतु बहुत मुश्किल कोई समझेगा, तो इसलिए ये छपा करके भेज देवे। तकलीफ भी कितना करेंगे, ढेर के ढेर आते हैं, वहाँ बड़ी भीड़ होती है। कहाँ? अरे एग्जीबिशन में है, वहाँ एग्जीबिशन में नदियाँ समझाती है ना, नदियों में आके स्नान करते हैं ना, हाँ, बड़ी भीड़ होती है, और फिर बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो समझा भी सके, ऐसे तो नहीं है कि सिर्फ पत्रा बांटा, सिर्फ लिटरेचर डालने से, लिटरेचर बांटने से कोई समझेगा? समझेगा नहीं। फिर भी पत्रा भी ऐसे कोई से दे करके किसको रोज रुपया, तो भी पत्रा बांटते हैं या नहीं बांटते हैं, खर्च करें वो भी मुश्किल है, पर ऐसी तरह जगह में खड़ा होना चाहिए जो पत्रा देता जावे। कोई एडवर्टाइज तो कुछ है नहीं, आजकल पत्रे भी बहुत होते हैं, दुकानदार वगैरह भी बहुत होते हैं, तो फिर ये भी किसी को, किसी न किसी को दे देना चाहिए, तो किसकी आंख चले, क्योंकि ये है तो रतन। ये जो कुछ भी तुम कागज टुकड़ी में लिख करके देते हो, ये जैसे कि तुम हीरे मोती जवाहरात ये रतन देते हो, परंतु बाप ने समझाया है ना कि इस समय में सब बंदर बुद्धि है, वो समझते कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं समझते। बड़े बड़े विद्वान आचार्य पंडित कोई भी नहीं समझते हैं, और तुम समझा देंगे तो झट गुर्र गुर्र करने लग पड़े। अभी भक्ति मार्ग के गुर्र गुर्र है ना, भक्ति मार्ग के अंदाज तो बहुत है, और तुम तो बहुत थोड़े हो। बाबा बोलते हैं कि सर्विस का शौक चाहिए, हर प्रकार का सर्विस, अपनी बादशाही स्थापन करते हो, यानी रिक्रूट्स बनाते हो। क्या बनाते हो? अरे राजाई कैसे मिलती है? हैं? लड़ाई से राजाई मिलती है, और लड़ाई करने के लिए सेना तो तैयार करनी पड़े, सेना तैयार करने के लिए रिक्रूट बनाने पड़ेंगे नहीं बनाने पड़े? तो अपनी बादशाही के लिए तुम जैसे कि रिक्रूट बनाते हो, क्योंकि ये है ईश्वरीय मिशन, तो क्या करना है? मनुष्य को देवता बनाने या पतित को पावन बनाने की मिशन है। फिर लिख भी सकते हो कि ये है पतित को पावन बनाने की मिशन, जिसमें क्या समझाया जाता है? सिर्फ समझाया जाता है मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को जो पतित पावन है उनको याद करो। हैं? क्या समझाना है? बेहद मन मना भव का मतलब तो फिर ये हो जाएगा, मेरे में मन लगाओ, तुम पर्चे बांटो और कहो मन मना भव, मेरे में मन लगाओ, वो झापड़ मार देगा। इसलिए बताओ क्या, बाप को याद करो। कौन से बाप को याद करो? जो पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही है, तो तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा। ये समझाया तो बहुत है। ओम शांति।